الحمد لله متفائل، الحمد لله متفائل، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مثل جند نوسر قال كاهو بيدو إصلاح کا نسخہ استعمال ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور تمام مشائخ کے نزدیک اصلاح کا نسخہ یہی ہے، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، اور قلت اختلاط مع الانام. پچھلے 3-4 مجالس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو چاروں چیزوں میں کمی کرنا، کھانے پینے میں، سونے میں، گفتگو میں، لوگوں سے اختلاط میں، عام طور پہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ مشائخ سالکین کے لیے اصلاح کا یہ ایک طریقہ ہے. اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو یہ تمام مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ ہے، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے. قلت طعام پہ ہم نے گفتگو شروع کی، اور قلت طعام سے متعلق ہم نے پچھلے 3-4 مجالس میں 3 اہم باتیں کی ہیں. اور پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ قلت طعام یعنی کم کھانا جو ہے وہ انسان کی طاقت کو کم نہیں کرتا. عام لوگ کم کھانے سے اس لیے بھی بھاگتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کمزور ہو جاؤں. تو ایک مجلس میں ہم نے اس بات کو پروف کیا کہ کم کھانا طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، صحت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. آج کل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اکثر کا تعلق زیادہ کھانے کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم نے کم کھانا طاقت کا ذریعہ ہے اس کے حوالے سے یہ بھی عرض کی کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور جانور ہے جس کو شیر کہتے ہیں، جس کا مسل سٹرینتھ ہر جانور سے زیادہ ہے، اس کی بھی خوراک پورے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا. تو کم کھانا انسان کو کمزور نہیں، کم کھانا انسان کو طاقتور کرتا ہے. قلت طعام سے متعلق دوسری بات کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح سے کم کھانا صحابہ کرام کا منقول ہے، ایسا کرنا عام انسان کے بس میں نہیں. کہ جو عبارتیں ہیں حدیث کی، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی کئی ہفتے جو ہے وہ ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کئی کئی دن فاقے ہو رہے ہیں. تو اس بات کو بھی بتایا گیا کہ جی ایسا کرنا ممکن اب بھی ہے، اور مثال دی گئی جس کے اپنے قریبی رشتہ دار کی، جنہوں نے اس سال 2025 میں 40 دن صرف پانی سے افطار کرنا اور پانی سے روزہ رکھنا، پانی سے سحری کرنا، اس پہ گزارا کیا اور آرام سے یہ کام کر لیا. تو کوئی ایک گروپ ہے روزہ رکھنے والوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 40 دن اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں ان کے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے جسم، بہت سارے جو ہے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے تو روحانیت بڑھانے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کی تھی. تو میں بڑا حیران، پہلے انہوں نے 21 دن کا یہ روزہ رکھا تھا، وہ 21 دن بھی یہ کام کرنا بڑا حیران ہے، بڑا حیران کن ہوتا ہے. تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو میں بڑی ان کی تعریف کرتا، میں کہتا یار آپ نے تو بالکل آسان کر دیا یہ بات سمجھنا کہ صحابہ کرام کئی کئی دن کھائے بغیر کیسے گزارا کر لیتے تھے. تو اس مرتبہ عید پہ ملاقات ہوئی तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी आपने जो 21 दिन जो किया बड़ा कमाल किया। उन्होंने कहा जी नियत तो 40 दिन की थी, उस वक्त कर नहीं सका, बड़ों ने मना किया और बड़ों ने इफ्तार जबरदस्ती करवा दी, मगर रमजान से पहले मैंने ये 40 दिन मुकम्मल कर लिए। तो ये दूसरी बात भी हल हो गई कि जो ये कहता है कि जी कैसे कम खाएंगे, कम खाना तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इंसानी ताकत के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, जितना भी कम खाना चाहे कम खा सकता है, और एक मतलब कम खाने पे सेट हो जाता है तो कम खाने पे सेटिंग चल भी सकती है। ये जो लोग डाइट कर रहे होते हैं ना वजन कम करने के लिए, हमें उनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा होता है कि देखो बेचारा, हम सारे मिलके दो दो पराठे खा रहे हैं और ये बेचारा आधी रोटी भी नहीं खा रहा है, मगर वो आधी रोटी नहीं खाने पे सेट हो चुका है, तो उसपे तरस खाने का भी मतलब ठीक है, तरस खाना चाहिए, मगर उसकी अपनी तबीयत के मुताबिक उसको कोई ऐसी जरूरत या ऐसी लालच नहीं रहती। एक मरतबा उसकी आदत अगर बन गई है कम खाने की, वो कम खाने पे सेट हो जाता है। तो किल्लत ताम से मुतालिक 3 बातें पिछली मजालिस में हमने अर्ज की। पहली बात ये कि जो कम खाना है इससे ताकत कम नहीं होती, ताकत बढ़ती है, सेहत बढ़ती है। दूसरी बात हमने की कि ये कम खाना जिस तरह से हदीस पाक में मनकूल है कि कई कई दिन फाके हो गए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2025 में एक शख्स ने अगर 40 दिन ये फाका कर लिया, और सैकड़ों लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है। तीसरी बात हमने कल की मजलिस में की कि किल्लत ताम जब सालिक को कहा जाता है, या किल्लत ताम आम मुसलमान के लिए भी है, तो कई मरतबा उसको गलत फहमी होती है, वो किल्लत ताम अपने लिए भी करता है, अपने इर्द गिर्द भी सबके लिए किल्लत ताम शुरू कर देता है। तो किल्लत ताम ये इस्लाह के लिए है, मगर इर्द गिर्द के लोगों को खाना खिलाने से फायदा ज्यादा है। तो कल की मजलिस में हमने यह हदीस भी नकल की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को खाना खिला है। शरीयत का मिजाज ये है कि इंसान के खुद के लिए किल्लत ताम है, और इर्द गिर्द जो लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको खूब खाना खिलाना है। आज की इस मजलिस में किल्लत ताम से मुतालिक एक चौथा और बड़ा अहम पॉइंट, और वो ये कि खानकाहों पे ये इस्लाह के नुस्खे के तौर पे काम किया जाता है, किल्लत ताम करना, मगर ये इस्लाह उस वक्त होगी जब ये कलील ताम भी जो है, ये जो थोड़ा भी खा रहे हैं, अगर ये हलाल हुआ तो ही फायदा है, अगर ये हलाल नहीं, अगर ये मुश्तबा है, अगर ये मिलावट वाला है, तो फिर वो इस्लाह का जो फायदा हासिल करना चाह रहे हैं उससे इंसान महरूम हो जाता है। हम समझते हैं हराम माल तो सिर्फ वही है जो चुरा के खाया जा रहा है, जो माल रिश्वत के जरिए से हासिल किया गया वो भी हराम है, जो माल धोखादही से हासिल किया गया वो भी हराम। हत्ता के मशायख ने लिखा है कि कोई शख्स अगर नौकरी कहीं करता है और उस नौकरी में मुतवातिर कोताही कर रहा है, जानबूझ के कोताही कर रहा है, तो अब जो मुआवजा ले रहा है वो भी 100% हलाल ना रहा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया कि वो माल जो किसी ने अपने हाथ से आपको दिया मगर दिल की खुशी से नहीं दिया, तीबे कल्ब के साथ नहीं दिया, वो भी जायज नहीं है। इंसान ने अपनी ओहदे को, अपनी सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए दूसरे से जबरदस्ती अगर कोई हदिया ले भी लिया तो वो भी जायज नहीं है। तो हलाल जो है या हराम जो है वो सिर्फ चोरी का माल नहीं है, हराम की एक बड़ी लिस्ट है। और किल्लत ताम जितना भी कर ले, जब तक कि वो किल्लत हलाल खाने की नहीं है तो जिस्म पर उसके असर नहीं होंगे। हराम अंदर जाता है तो इंसान का जिस्म फिर हराम काम करने के लिए तैयार हो जाता है। या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबाति, तुम हलाल खाओ, वामलू सालिहा, और नेक आमाल करो। नेक आमाल का ताल्लुक हलाल खाने के साथ है। तो खानकाहों में जहां जिक्र अस्कार का बड़ा रुझान और बड़ी उसकी तरफ तवज्जो है, वहां दूसरी बड़ी चीज जिसमें तवज्जो होती है वो हलाल और पाकीजा खाने की भी होती है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे जो सालिक आता है उससे ये वादा लिया जाता कि जितने दिन यहाँ खानकाह पे रहोगे जो खानकाह से खाना मिलेगा वो खाना है, बाहर का कोई खाना नहीं खाना। कि बाहर के खानों के अंदर अगर हलाल है भी सही तो कई मरतबा तय्यब और पाकीजा नहीं होता। हजरत का अपना मामूल हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही था कि ये नहीं कि सिर्फ हलाल खाना है बल्कि हलाल भी ऐसे शख्स के हाथ का पका हुआ खाना है जो नमाजी है। बेनमाजी के हाथ के खाने से परहेज फरमाते थे। हत्ता कि हज का सफर समंदरी जहाज पे किया, हजरत के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है। समंदरी जहाज का सफर उस जमाने में कोई 30-35-40 दिन का था, और पता चला कि जो जहाज का जो बावर्ची है वो बेनमाजी है। तो हजरत ने जहाज से खाना ही नहीं खाया 40 दिन। जो अपने साथ थोड़ा बहुत ले गए थे वो इस्तेमाल किया, तो फल वगैरह इस्तेमाल कर लिए। उसको भी समझाते रहे सब कि भाई नमाज पढ़ ले, हज का सफर हो रहा है ना, वो समझे। मतलब तो वो भी नहीं समझा तो हजरत ने भी नहीं कहा। 40 दिन बाद जब आप जद्दा की बंदरगाह पर पहुंचे, सेहत बहुत ही गिर गई थी। आपको लेने आने वाले जो हजरत के मुरीदीन थे उन्होंने जब हजरत देखी तो बहुत ही उनको तकलीफ हुई। जब हालात पूछे तो जी बताया कि जी वो बेनमाजी था और बेनमाजी के हाथ में था। तो मुरीदीन अपनी मोहब्बत में उन्होंने कहा हजरत आपको खा फिर भी लेना चाहिए था, सफर था और आपकी सेहत इतनी वो हो गई है, आगे हज का सफर है। तो हजरत ने जवाब दिया कि जी इस मुबारक जगह पे कुछ लेने के लिए आए हैं, जो कुछ है वो गंवाने के लिए नहीं आए हैं। तो खानकाहों पर सिर्फ ये नहीं कि किल्लते ताम, मगर किल्लते ताम के साथ साथ हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ का एहतमाम है। और ये नुस्खा कोई सिर्फ सालिकीन तरीकत के लिए नहीं है, नुस्खा सारे मुसलमानों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हलाल पाकीज़ा तैयब बरकतों वाला इज्जतों वाला रिस्क नसीब फरमाए। तवाना अलहम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाء वल मुरसलीन, اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله برحمتك يا
وعليكم السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.